हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 43। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम् यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धि संयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। शब्दों का अर्थ, तत्र वहां तम उस बुद्धि संयोगम चेतना की जागृति को लभते प्राप्त होता है, पौर्वदेहिकम पूर्व देह से यतते प्रयास करता है, च भी ततः तत्पश्चात भूयः पुनः संसिद्धौ सिद्धि के लिए कुरु नंदन हे कुरुपुत्र। अनुवाद, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावर्त वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जर भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते ना थे। बाद में राजा रहुकर्ण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालम् பங்கும் லங்கயதேகிரம் யக்ரிபாதமஹம் வந்தி ஸ்ரீகுருந்தீனதாரம் ஓமஜானதிமிரந்தஸ்ய ஜானஞ்சனாஷலாகயா சக்ஷுரோன்மிலித்தம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குருஹு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாஞ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாகஜாதம் சகணரகுநாதன்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ணசைதன்யதேவ ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதம் சகணலலிதா ஸ்ரீவிசாகான்விதாஞ்ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதி கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த சப்த காஞ்சனம் காரண்ய ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானோ சூதி தேவி பிரணமாமி ஹரி ப்ரே. வஞ்சாகல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைதம் கதாதாரம் ஸ்ரீவாசுதி கௌர பக்தவிந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மாத் கீ ஜெய் ஹோ. अत्यंत ही सुंदर टॉपिक चल रहा है जिसमें अर्जुन ने भगवान से पूछा कि असफल योगी की क्या गति होती है. भगवान से अर्जुन ने कहा अयति ही श्रद्धेयोपेता योगा चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति. जो श्रद्धा से योग अभ्यास करने का प्रयास करता है परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं करता तो उसकी क्या गति होती है. भगवान कहते हैं 41 में कि पहले 40 में भगवान ने आश्वासन दिया कि जो शुद्ध कार्य करता है नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति उसकी दुर्गति तो कभी नहीं होगी. अब सदगति होगी तो क्या होगा. पहले अगर कम प्रयास में किया कम प्रयास किया है और सिद्धि प्राप्त नहीं हुई योग टूट गया तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती सम शुचि नाम श्रीमताम ये ही योगो भ्रष्टो विनायते के पुण्य लोकों को प्राप्त होता है और वहां पर बहुत बहुत काल तक रहता है और उसके बाद शुचि नाम श्रीमताम पवित्र लोगों के घर में या फिर धनवान परिवार में जन्म लेता है और उससे भी अगर बहुत ज्यादा उसने योग अभ्यास बहुत ज्यादा आगे निकल गया होगा और बहुत बहुत दीर्घ काल तक यदि उसने योग किया होगा तो असफल होने के बाद उसे अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमता बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म मिलेगा. एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम और ऐसा जन्म प्राप्त करना अत्यंत कठिन है क्योंकि ऐसे जन्म को प्राप्त करके जीव अत्यंत ही शीघ्रता के साथ जीवन की सिद्धि को प्राप्त करता है. और आज भगवान कहते हैं बहुत ही सुंदर कि तत्रतम बुद्धि संयोगम तत्रतम वहां जन्म यानी कि जो नया अब उसने जहां पर भी जन्म लिया है चाहे योगियों के कुल में जन्म लिया है या फिर कहीं पर भी जब उसने जीव ने जन्म लिया है बुद्धि संयोग का बुद्धि संयोग का मतलब चेतना की जागृति यानी जब चेतना पुनः जागृत होगी तो क्या होगा. लभते पौर्व देहिकम दोबारा उसको पौर्व देहिकम मतलब पुराने जन्म में पूर्व देह में जो उसने कार्य किया है भक्ति का, वो स्मृति उसको पुनः याद आ जाएगी, पूर्व जन्म की देही चेतना को पुनः प्राप्त करेगा और यतते चतो भूय, फिर क्या करेगा, फौरन से यत्न करना शुरू करेगा, पुराना जो उसने अपना प्रयास असफल छोड़ा है और संसिद्ध कुरु नंदन, अब वो क्या करेगा, सिद्धि के लिए फौरन से स्ट्रगल करना शुरू करेगा। वास्तव में भक्तों ये बिल्कुल उसी प्रकार है, जब कोई व्यक्ति सो जाता है, नींद में होता है, तो उसे याद नहीं रहता कि मतलब जैसे अब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, वो पूरा दिन अपने बिजनेस में कार्य करता है ऑफिस में, और जब घर पे आता है तो घर पे वो थोड़ा फ्रेश होता है, खाना वाना खाता है, फिर सो जाता है। तो सोने के टाइम पर, अब सोने की भी तीन स्टेजेस होती हैं, सोने के लिए ना सबसे पहले क्या होता है कि जीव जाग रहा होता है, लेटता है, लाइड ऑन करता है, उस टाइम पर जाग रहा होता है, सब कुछ याद होता है कि मुझे ये कार्य करना है, कल मुझे ये कार्य करना, प्लानिंग भी हो रही होती है माइंड में। फिर आहिस्ता 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 वो स्वप्न की अवस्था में आता है, उसमें क्या होता है, वो एक नई दुनिया में चला जाता है, जहां पर कि वो दुनिया जो है वो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। वहां पर अगर आज अभी आप किसी के पिता हो, तो कल मतलब स्वप्न में आप किसी के बच्चे भी हो सकते हो, या फिर स्वप्न क्या कर सकते हो कि कहीं और जगह पे चले जाओगे, कुछ और करोगे, कुछ कहीं सांप नजर आता है, कहीं जंगल में चले जाते हो, मतलब अपनी वास्तविक स्थिति से हट जाते हो। और उसके बाद स्वप्न के बाद क्या होता है, सुषुप्ति। सुषुप्ति में वो क्या होता है, एकदम डीप स्लीप, उसमें आपको स्वप्न भी नहीं आता है। तो उस टाइम पर जब आप गहरी नींद में होते हो, तो तब कभी अगर कोई लाइट भी जलाता है या कुछ आता है, कोई धीरे से चला जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो उसके बाद जब जीव जाग रहा होता है ना, जैसे अभी डीप स्लीप में आ गया, उसके बाद जब जागना होता है तो डायरेक्ट से जागता नहीं है, फिर क्या होता है, जब सुबह होती है ना, जब जागने वाला होता है, उसके बाद वापस से स्वप्न अवस्था में आता है। फिर देखो सुबह को भी हमें स्वप्न आता है ना कोई हमें दिखाई दे रहा होता है, फिर उसके बाद फौरन बाद हम जागृति अवस्था में आते हैं, फिर हमें जब डायरेक्ट से जागते हैं तो उस समय वो वाला स्वप्न हमें याद होता है, क्योंकि अभी मतलब करीब ही हम लोगों ने देखा हुआ होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं। वास्तव में भक्तों ये निद्रा जो है वो अत्यंत कृपा है भगवान की, कि उस निद्रा में जब हम आते हैं, नींद हो रही होती है, उस टाइम पर माइंड एकदम रिलैक्स, हमारी क्रॉस बॉडी और हमारा ये जो मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर है, वो सब रिलैक्स हो जाते हैं, अपने पूर्व चेतना को बिल्कुल मतलब अगर उस समय भी, जैसे अगर किसी को कोई बहुत बड़ा रोग है, दुख है, या किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर उसको नींद ना आए ना तो पागल हो जाए वो, कंटिन्यूस स्मरण में। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए बंदा सो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो फ्रेश हो जाता है, तो ये बहुत ही भगवान की बड़ी करुणा है निद्रा। तो जब निद्रा से जब वो जागता है, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, वो नींद में सो गया और सुबह उठेगा तो उसे याद रहता है, मतलब उस याद रहेगा कि कल मैंने ये कार्य करना था, अभी मैंने इनकम्प्लीट, जो जो काम इनकम्प्लीट थे वो वापस से माइंड में रिवाइंड होते रहेंगे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वो कस्टमर को डील करना है, ये माल उधर पहुंचाना है, ये कार्य करना है। जब आप नींद से उठते उस टाइम पर आपको सब कुछ, ये कितना हैरत की बात है, दिस इज जस्ट लाइक अ मिरेकल, कितना अजीब है। जब हम नींद से जागते हैं तो अपने कल वाली सारी चीजों को याद है कि कल मेरा ये मेरी माता थी, ये मेरे पिता थे, मम्मी ने मुझे ये कार्य बोला था, मुझे स्कूल में स्कूल वालों ने ये असाइनमेंट बोला था, ये कार्य करने के लिए ये चीजें मुझे घर से याद करनी आनी, तो सब कुछ हमें याद होता है। वास्तव में ये केवल भगवान की कृपा है, ये भगवान की करुणा है कि जब हम नींद से जागते हैं तो हमें सब कुछ भगवान की कृपा। अगर कभी ऐसा हो कि भगवान जो हृदय में बैठा हुआ है, क्योंकि जब डीप स्लीप में होता है ना बंदा, तो समझो वही मृत्यु का एक दृष्टांत होता है, ऐसी ही होती है मृत्यु। अगर कभी हृदय में बैठे हुए परमात्मा ने ये सोचा कि बस अब नहीं जगाता हूं इसको, रहने तो सोया रहे भले, तो समझो उसी समय सब कुछ समाप्त हो जाएगा। परंतु ये करुणा है कृष्ण की, कि हम पुनः सुबह को जागते हैं नई उमंगों के साथ, नई रिफ्रेशमेंट के साथ। और भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। समस्त जीवों के हृदय में बैठा हुआ हूँ, उन्हें स्मृति ज्ञान और विस्मृति भी प्रदान करता हूँ। तो जिस प्रकार निद्रा दिन और रात का अंतर है, जैसे सुबह दिन को हम जाग रहे होते हैं, फिर रात में सो रहे होते हैं और बीच में, और फिर दूसरे दिन में वापस से जागते हैं जब सुबह होती है, उसी प्रकार मृत्यु क्या होता है, दो जन्मों का अंतर है, एक जन्म बीच में मृत्यु और फिर दूसरा जन्म। तो इसी प्रकार यहाँ पर शास्त्र हमें बताता है, जब ब्रह्मा का दिन होता है तो संपूर्ण प्राणी लोग जो है वो जाग जाते हैं, जितने भी जीव होते हैं अपने कर्मों के अनुसार पुनः स्टार्ट करते हैं अपना कार्य। और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो पुनः सब विस्मृति की हालत में चले जाते हैं। कल्प क्षय पुनस्तानी कल्पादौ विसृजा में, हम कल्प के अंत होने पर संपूर्ण जगत का विनाश हो जाता है और नए कल्प के आरंभ में अपनी शक्ति द्वारा भगवान पुनः उसको जागृत अवस्था में करते हैं। अब उस समय भी क्या होता है कि जितने भी जीव ने पुराने जन्म में जैसे जैसे कार्य किए उनको, उनके हिसाब से उनको जन्म मिलता है और फिर वो अपने कर्मों के अनुसार पुनः कार्य करते हैं। तो ये सब भगवान की कृपा है कि हम भगवान की कृपा से अपने कर्मों के समस्त अच्छे और बुरे जितने भी रिजल्ट हैं अपने कर्मों के भोगते हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट टू कृष्णा मर्सी, कि ये इन नींद के लिए भी हम पूरा कृष्ण की कृपा पर डिपेंडेंट हैं। कुछ कुछ लोग को तो नींद ही नहीं आती, वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आ जाए। हम एक जानते हैं, हमारे मित्र हैं, उनको नींद ही नहीं आती थी, भगवान को बोलती थोड़ी देर के लिए मुझे नींद दे दो, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा है, भक्तगण के लिए तो ये बहुत ही सरल बात है, आ जाओ क्लास में सो जाओ मजे से, इतना नींद आ जाती है कि फिर रिलैक्स होके बंदा सोता है, बाद में कथा खत्म होती है फिर जागते हैं। लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा है कि जब हम नींद से जागते हैं ना, दूसरा जन्म जब होता है तो भगवान क्या कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगत लभते पौर देहिकम। तो दूसरे जन्म में उससे वो सब कुछ जो पुराने जन्म में उसने कार्य किया था वो सब अपूर्ण चेतना, उसको पूर्व जन्म की दैवी चेतना उसे पुनः प्राप्त होती है। तो ये इसी तरह है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे अगर किसी ने पहले जन्म में भक्ति भी की होती है तो यहाँ पर आते ही फौरन भक्त नहीं बनते हैं। जैसे श्रीमान श्रीमता हम देखते हैं भक्ति में, जैसे हम लोग आए तो हमारे साथ कोई 20 साल के बच्चे, कोई उसके बाद 30 साल, कोई 40 साल, इस तरह के लोग जुड़ते हैं भक्ति में आते हैं। मतलब तब तक भी उन्होंने भक्ति तो पिछले जन्म में जो की थी वो तो उनका क्रेडिट तो उनके पास है ही है ना, लेकिन जब तक वो भक्ति में नहीं आते वो एकदम साधारण लोग दिखते हैं। तो कभी कभी यह प्रश्न आता है कि उनको क्यों इतना समय लगता है। इसको हम इस तरह से एक मिसाल से समझ सकते हैं, जैसे किसी एक व्यक्ति ने एक बैंक में अकाउंट खुलवाया और उसमें बहुत बहुत धनराशि जमा की। अब धनराशि उसने जमा की तो बैंक में तो वो सेफ है, परंतु हुआ यूं कि उसने चेकबुक कहीं खो दी। अब चेकबुक मतलब धन उसका सेफ है परंतु उसके पास चेकबुक ही नहीं है। अब चेकबुक नहीं है और दूसरी बात और उससे बड़ी विडंबना ये हुई कि वो ये खुद भी भूल गया कि मैंने कोई बैंक में मेरा कोई अकाउंट है, मैंने उसमें बहुत सारा धन जमा किया है। या फिर कभी ऐसा हो कि कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी खरीदता है या शेयर्स लेता है, भले ही कोई ऐसी चीज करता है, लेकिन अचानक से वो ये चीज भूल जाता है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कुछ अकाउंट खुलवाया है या फिर मेरे पास कुछ धन है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि वो घर में कहीं अचानक से सफाई कर रही है उनकी पत्नी और फिर बोलती है कि ये पेपर किस चीज के हैं, तो बता रही इतना सारा धन मेरा बैंक में 50 लाख रुपए जमा हुए, मैं ये तो मुझे धन चाहिए, मैं जाके वहां से निकालता हूँ, अभी मैं तो भूल ही गया था। कभी कभी ऐसा होता है। तो ये समझो कि भक्ति भक्ति का जो बैंक होता है उसके अंदर भी जो हमारा अकाउंट खोल लिया हमने तो उसके अंदर जो धन राशि है वो सदैव सेफ होती है, कभी भी वो ऐसा नहीं होता है कि वो नष्ट हो जाए। केवल एक जन्म में ही नहीं, 10 जन्मों के बाद, 20 जन्मों के बाद, 100 जन्मों के बाद भी आपका अकाउंट में जो खुलवाया था भक्ति बैंक। और दूसरा इस भक्ति बैंक की एक बहुत ही सुंदर बात मैं आपको बताऊं कि इन द भक्ति बैंक बैलेंस विल नॉट रिड्यूस्ड ओनली इंक्रीज, है ना। कभी आप कितना भी निकालो निकालो निकालो, भक्ति को कितना भी आप यूज करो अपनी भक्ति को, वो कभी भी बैलेंस आपका रिड्यूस नहीं होता है। कभी भी संसार के बैंक में क्या होगा, आप जब निकालते जाओगे तो फिर आपको एक पर्ची हाथ में दी जाएगी कि आपकी सारा धन समाप्त हो गया। लेकिन भक्ति के बैंक में हमारा कोई भी धन समाप्त नहीं होता है, कंटिन्यूस बढ़ता जाता है। और जब हम उसको निकलना चाहते, जब यानी कि शुद्ध भक्तों का संग होता है, जब हमारी इच्छा होती है, वास्तव में तीव्र इच्छा की आवश्यकता है, इच्छा से भक्ति शुरू होती है। जिस दिन इच्छा की कि अब मैं कृष्ण की शरण में जाना चाहता हूँ, मैं भक्तों के मुखारविंद से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहता हूँ, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहता हूँ, जिस दिन से ये इच्छा मन में उत्पन्न हुई उसी दिन से आपका सारा का सारा अमाउंट आपको लौटा दिया जाएगा। जहाँ तक आपने भक्ति की थी वहीं से आप आगे उन्नति करोगे। ऐसा नहीं है जैसे इस संसार भौतिक जगत में होता है कि एक व्यक्ति भले डॉक्टर बन जाए, MBBS कर ले, लेकिन जब दूसरा जन्म लेगा तो उसको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, F और F2। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, वो पिछले जन्म की जो उसने अकाउंट जमा किया है उसकी पूर्वदेही नाम लगते पूर्वदेही कम, जो पूर्वदेही की जो सुंदर चेतना है, जो उन्होंने उसने जो अपनी भक्ति की है वो सारा का सारा जमा हुआ है और उसको वापस से प्राप्त होता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे आगे उन्नति करता है। ऐसा नहीं कि वापस शुरू से उसको भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें देते हैं महाराजा भरत का, जैसे हमने पहले भी इन्हीं श्लोक्स में हमने पढ़ा था कि पहले वो महाराजा भरत थे। अब महाराजा भरत थे, उन्होंने वो विश्व भर के सम्राट थे और तभी से जब वो महाराजा भरत जब आए थे तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। इससे पहले क्या बोलते थे इसको, इलावर्ष के नाम से, ये जो भारतवर्ष है उसको इलावर्ष कहा जाता है, जाता था। लेकिन जब भरत राजा के राज्य में इतना वो संपन्न राज सम्राट इतने विख्यात थे कि देवलोकों में भी उसको भारतवर्ष के नाम से आप पुकारा जाता है। तो अल्प आयु में मतलब छोटी सी उम्र में ही उसने आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। अब छोटी सी उम्र में किया था तो भले ही हम उनके पिछले जन्म की कहानी नहीं पढ़ रहे, लेकिन यहाँ से ये तो पता चल जाता है कि इतनी छोटी सी उम्र में जब उन्होंने आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए संन्यास ले लिया था तो अवश्य उनकी पिछले जन्म की बहुत सारी जमा पूंजी थी। अब बहुत सारी जमा पूंजी थी लेकिन आज क्या हुआ कि उसने एक हिरण के मतलब भले आज भी उसने संन्यास ले लिया लेकिन एक हिरण के प्रेम में उसको फिर जब मृत्यु होने वाली थी तो उसको वही याद आया। यहाँ पर इस थॉट को हमें सदैव याद रखना है, भगवान जो आगे हमें बताएंगे 8.5 में, मतलब यहाँ से हमें ये बात तो बिल्कुल सही तरह से समझ लेनी है कि हम चाहे कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो जाए, नेक्स्ट बर्थ का पूरा डिपेंड किस पर है, हमारे अंत समय की चेतना पर है। मृत्यु के समय जैसी चेतना होगी वैसा ही हमें अगला जन्म होगा, जहाँ पर भले ही हम कितने ही बड़े, अभी जैसे महाराज भरत की हम बात सुन रहे हैं कि बचपन ही उन्होंने संन्यास ले लिया था, घर बार त्याग दिया था, इतना बड़ा राज्य त्याग दिया था, लेकिन अंत समय में जब उनकी चेतना किसके अंदर लग गई थी, हिरण के अंदर, तो उनको हिरण बनना पड़ा। उसी प्रकार अजामिल पूरा जन्म उसने क्या किया, केवल और केवल अपराध किए, लेकिन अंत समय में भगवान की कृपा से, संत जनों की कृपा से उन्हें भगवान के पवित्र नाम की याद आ गई, तो उसका उस टाइम पर जो भी डिसीजन लिया जा रहा था अंत समय के टाइम पर, ये बात को भगवान आगे 8.6 में बहुत ही सुंदर तरीके से क्लियर करेंगे। भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वायतिकोन्ते सदा तद्भाव भावितम। यम यम वापी स्मरण भावम। अब जिस जिस चीज को जिस जिस स्थिति को स्मरण करोगे कब त्यजत्यन्ते कलेवरम, मृत्यु के समय जब आपका शरीर जब त्याग रहे हो तो जैसी बात का आप स्मरण करोगे तम तमे वायति कौनते, तुम वैसा ही उसी उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे सदा तद भाव भाविता। तो अगर कोई भक्ति करता है तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि वो ना नेक्स्ट जन्म उसको अभी अभी से ही पहले से ही वो इतना आश्वस्त नहीं हो सकता कि नेक्स्ट जन्म में मैं ना जरूर या तो फिर शुचिनाम श्रीमताम, नहीं शुचिनाम श्रीमताम में तो वो पैदा ही होगा लेकिन फिर भी ये जरूरी उस टाइम पर है। जैसे अभी महाराजा भरत है वो भले महापुरुष भी थे लेकिन मृत्यु के समय हिरण याद आया तो हिरण का जन्म मिला ना, यानी भक्ति करने के बाद भी संभव है कि उसे जानवर का जन्म मिले। जैसे हम महाराजा इंद्रद्युम्न की कथा पढ़ते हैं, वो इतने बड़े राजा थे, इतने सत्यवादी राजा थे, इतने सारे उन्होंने भागवतम के श्लोक कंठस्थ किए थे लेकिन मृत्यु के समय उन्होंने ऐसा आचरण किया तो फिर उनको हाथी बनना पड़ा। तो इस तरह से ये कोई गारंटी नहीं है कि भक्ति में आने के बाद आपका पतन शारीरिक लिहाज से नहीं होगा, लेकिन बताना भगवान क्या कह रहे हैं कि आपका क्रेडिट कभी खत्म नहीं होगा। आप भक्ति में जितना आपने जमा किया है वो अवश्य आपके पास ही रहेगा, फिर जब आप वास्तविक पूर्व देह की शुद्ध चेतना को जब वापस से विकसित करोगे तो आपका पूरा का पूरा धनराशि आपको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन आप मृत्यु के टाइम पर जिस जिस भाव को स्मरण करोगे आपका दूसरा जन्म सेम वही होगा। इसलिए भगवान हमें सावधान करते हुए 8.7 में कहते हैं तस्मात सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर युद्ध च। ये जो एक श्लोक है ना 8.7, इस पर हमें अपनी पूरी जिंदगी को टिकाना है। भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसी संशय, अगर तुमने अपनी मन और बुद्धि को मेरे अतिरिक्त किसी और को अपने मन में अपनी बुद्धि में घुसने दिया ना तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, तुम तब तक मेरे भक्त हो जब तक जब तुम अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करते हो। ये देखो 8.7 जो है उसमें भगवान कहते हैं तस्मात सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर युद्ध च, सारे टाइम में जो भी समय है तुम्हारे पास तुम भले कोई भी कार्य कर रहे हो, मैं कार्य की बात नहीं कर रहा हूँ अर्जुन, कार्य तुम अपना करो लेकिन स्मरण मेरा करो, सदैव मुझे याद करो, क्योंकि अपने मन और बुद्धि को मई अर्पित मनोबुद्धि अपने मन और बुद्धि को मुझे दे दो और ऐसा अगर करोगे तो मामे वैश्यस्य संशय, कोई संशय नहीं है, तुम अवश्य मुझे प्राप्त करोगे। और उस अगर मुझे प्राप्त करोगे भगवान कहते हैं 8.5 में अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, एव का मतलब होता है निश्चित रूप से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को। अगर अंत समय में जीवन के अंत काले से मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर आप स्मरण करोगे जीवन के अंत समय में शरीर को त्यागते वक्त मेरा स्मरण करोगे, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशय। हर श्लोक में भगवान ने बोला है संशय मत करो, शक मत करो, तुम्हें कुछ भी डाउट नहीं करना है, अगर मुझे स्मरण करोगे मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करोगे सदैव मेरा स्मरण करोगे और अंत समय में, सदैव का मतलब होता है देखो अंत समय कोई भी समय हो सकता है, एक क्षण के बाद भी हमारा अंत समय हो सकता है, और अगर हमारे मन और बुद्धि में कृष्ण के अतिरिक्त कोई और आ गया तो फिर अगला जन्म बिगड़ सकता है। उस जन्म में भले ही दिव्य चेतना के अनुसार हमारी भक्ति जो है वो तो सेफ होगी लेकिन फिर अगर हम भी कुछ हिरण बन गए, कुत्ता बिल्ली बन गए या फिर कुछ ऐसा हमारी बुद्धि में अगर किसी और की उस टाइम पर किसी और को स्मरण किया और भौतिक जगत में कोई और जन्म मिल जाएगा तो न जाने कितने जन्म और भी खत्म हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति में न जाने कितना समय लगेगा। इसलिए भगवान सावधान करते हैं अर्जुन ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करो और जब मन और बुद्धि मुझे समर्पित करोगे तो फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, युद्ध भी कर रहे हो, युद्ध में सबकी हत्या भी कर रहे हो फिर भी तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर तो भगवान ये बता रहे हैं कि यदि हम जीवन में कोई भक्ति का प्रयास करते हैं, थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, तो मतलब जैसे महाराजा भरत ने भी भले हिरण का जन्म ले लिया, उसके बाद जड़भर का जन्म ले लिया, लेकिन उसकी भक्ति जो थी उसका क्रेडिट समाप्त नहीं हुआ था, वो भक्ति उसके पास संचित थी। और उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा भक्ति योग या योग अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कभी भी जाया नहीं होता है। तो भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते हैं। कृष्ण छोड़ते नहीं है, एक बार जिसने कृष्ण का नाम ले लिया है तो ये अब कृष्ण की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसे लेकर जाएगा अपने धाम में। जब यदि किसी ने गुरु अगर ग्रहण कर लिया है तो ये गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने शिष्य को कृष्ण के पास ले जाना। लेकिन उसके लिए ये खाली कृष्ण की और गुरु की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हमारा भी तो कर्तव्य होता है कि हम इस चीज को सीरियस लें। हमने बस गुरु कर दिया या कृष्ण को महामंत्र जप कर दिया तो उसको हम इतना ढीला नहीं छोड़ सकते। हमें उत्साह के साथ, बहुत हर रोज नई उमंग के साथ, एक एक श्लोक को, एक एक मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये वो मंत्र है जिसके ऊपर, ये जो मंत्र है यही एक मात्र सहारा है मुझे कृष्ण तक पहुंचाने वाला। यदि जब हम अपनी माला 16 माला कर रहे होते हैं तो हमें ये बात को सोचना है कि ये केवल एक ना एक्टिविटी नहीं है साधारण कार्यों की तरह कि ये भी मेरी 16 माला भी खत्म करनी है मुझे। ये एक एक मंत्र जो मैं श्लोक जो उच्चारण कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मैं जितना तीव्रता से, जितना संजीदगी के साथ, जितना प्रेम से, जितना भाव से इसको उच्चारण करूंगा, मेरे और कृष्ण की दूरी उतना ही आसानी से खत्म हो जाएगी, उतना ही जल्दी मैं तीव्रता से कृष्ण को प्राप्त करूंगा। तो हमें अपनी भक्ति में सीरियस होना है। भक्ति स्टार्ट कर लेने का मतलब ये तो है कि आपका क्रेडिट जमा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली। अभी हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। अब वो रास्ता सफल तब होता है जब कृष्ण को प्राप्त करते हैं। और कृष्ण कहते हैं यदि मन और बुद्धि में मेरे अतिरिक्त कोई विचार आया तो तुम डगमगा कर दूसरे रास्ते की ओर जा सकते हो, और अगर किधर दूसरी जगह चले गए फिर मेरे रास्ते पर आना बहुत बहुत हार्ड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सदैव श्रवण और कीर्तन के दामन को पकड़ के हम भगवान के ओर खींचते चले जाएं। अपने आप को कभी भी श्रवण और कीर्तन का, भगवान के पवित्र नाम का, अपनी जो हमारी जो साधना है इसको कस के पकड़ना है। कभी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि हमारा जप कंप्लीट नहीं हो, कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि हमारा श्रवण न हो, कोई ऐसा दिन न हो कि हम अपनी भगवान की सेवा में कोई ना कमी छोड़ें, किसी और वस्तु को इम्पोर्टेंस दें कृष्ण से ज्यादा, अपने जप से ज्यादा किसी और कार्य को इम्पोर्टेंस दें, अपने सोने को या अपने ना कोई दूसरी चीज को कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को इम्पोर्टेंस जिस दिन हमने दी ना, तो समझो उस दिन से फिर कृष्ण हमसे दूर होते जाते। हो सकता है फिर पता नहीं हमें भी कहाँ कौन सा जन्म लेना पड़े। तो इसलिए आप सबसे विनती है कि मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।